दिन भर 5 अप्रैल बुधवार सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए किया बड़ी कर्ज माफी का ऐलान, लेकिन क्या कहते हैं किसान?
हमारे पास आज की पोजीशन में जैसे 10 12 15 एकड़ जमीन है साहब, तो उसमें भी तो हमने लागत लगाई, कह जाओ उठाओ बैंकन को।
राजस्थान के अलवर में कथित गौरक्षकों के हमले में एक आदमी की मौत, कई लोग घायल।
बहरोड में आने के बाद 4-5 मोटरसाइकिल वालों ने पैरों को घेर लिया, पहले पैसे छीने, फिर पैसा छीन कर फिर गायों की आड़ में उन्होंने हमारी मार पिटाई करी है।
दुनिया जहान में चर्चा इक्वेडोर की, जहां दशकों से सत्ता पर काबिज साम्यवादी दल को हराने में दक्षिण पंथी हुए हैं नाकाम। और खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। चीन ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर कड़ा विरोध जाहिर किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन ने कहा है कि इस दौरे से भारत और चीन के संबंधों को गंभीर क्षति हुई है। उधर भारत ने दलाई लामा की यात्रा को पूरी तरह धार्मिक यात्रा बताया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है और धार्मिक नेताओं पर पाबंदी नहीं लगाता है। उन्होंने चीन से अपील की है कि वो दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा को राजनीतिक रूप में न ले। सीरिया में कल हुए गैस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। ये हमला किसने किया, इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रासायनिक हमले के लिए राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना को जिम्मेदार बताया है। वहीं रूस का कहना है कि सीरिया के हवाई हमले में विद्रोहियों के हथियार भंडार को निशाना बनाया गया, जहां रासायनिक हथियार रखे गए थे। इस हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 4 साल पहले सीरिया से रासायनिक हथियार हटाने के लिए निर्धारित संयुक्त राष्ट्र की टीम की अगुवाई करने वाले जेरी स्मिथ ने रूस के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा,
If it was indeed an opposition agent and
अगर ये वास्तव में विरोधियों का भंडार था और रूस और सीरिया की सेना ये जानती थी, तो उन्हें पारंपरिक हथियारों से इसे निशाना बनाने का जोखिम नहीं लेना चाहिए था। अगर ऐसी स्थिति थी भी, तो भी कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। ये थे जेरी स्मिथ के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ताइवान का कहना है कि वो चीन से अपनी रक्षा के लिए 8 पनडुब्बी तैयार करने के इरादे में है। ये पहला मौका है जबकि ताइवान ऐसी कोशिश कर रहा है। हथियारों के लिए ताइवान अब तक अमरीका पर निर्भर रहा है, लेकिन चीन की आपत्तियों की वजह से हथियार आपूर्ति धीमी हुई है। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने से जुड़ी बातचीत के दिशा निर्देशों को ईयू की संसद ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अलग होने की शर्तें तय होने तक व्यापार पर कोई समझौता नहीं होगा। इसमें एक दूसरे के क्षेत्रों में नागरिकता तय करना और ब्रिटेन के मौजूदा वित्तीय वादों को पूरा करना शामिल है। ईयू की ओर से मुख्य वार्ताकार मिशेल बार्निए ने संसद को बताया कि भरोसा बहाल करने और कामयाबी हासिल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना सबसे अच्छा तरीका है। उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जबकि एक दिन बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फ्लोरिडा में मुलाकात होनी है। हाल में ट्रंप ने कहा था कि अमरीका उत्तर कोरिया की समस्या का समाधान कर लेगा, चाहे इसमें चीन की मदद मिले या नहीं। जापान और दक्षिण कोरिया ने परीक्षण की निंदा की है। वहीं चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ख्वा चुनयिंग ने कहा, चीन ने इससे जुड़ी रिपोर्ट पर गौर किया है। हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक के जरिए प्रक्षेपण से जुड़ी उत्तर कोरिया की गतिविधियों को लेकर साफ दिशा निर्देश हैं। हम मानते हैं कि मौजूदा स्थिति में सभी संबंधित पक्षों को धैर्य रखना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़े। ये थे ख्वा चुनयिंग के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति जोसेफ कबीला ने कहा है कि अगले 48 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल बीते साल खत्म हो चुका है। उनके पद छोड़ने से इनकार के बाद देश में हिंसा में इजाफा हुआ है। कबीला और विरोधियों के बीच नए साल के मौके पर समझौता हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति का मुद्दा अहम था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। देश और दुनिया की खबरों में इस वक्त उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है, जहां किसानों को बड़ी कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। और इस कर्ज माफी के फैसले के बाद भले ही दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग भले ही मुखर हो गई हो, लेकिन यहां फिलहाल इस फैसले से जुड़ी तमाम शर्तों को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। एक ओर किसानों में इसे लेकर दुविधा और नाराजगी है, तो दूसरी ओर जानकार भी इसे राजनीति से ज्यादा और कुछ नहीं बता रहे हैं। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कैबिनेट बैठक और उसमें भी किसानों की कर्ज माफी का निर्णय लेने में शुभ मुहूर्त का पूरा ध्यान रखा, लेकिन फैसला होते ही विरोध के स्वर भी सामने आने लगे हैं। राजनीतिक दलों का विरोध अपनी जगह है, लेकिन जिन किसानों के लिए यह फैसला लिया गया है उनमें भी इसे लेकर बहुत उत्साह और खुशी नहीं है। कर्ज माफी की सीमा बहुत कम यानी सिर्फ 1,00,000 रुपए रखी गई है। दूसरे ये कुछ ही किसानों के लिए है और उनमें भी सिर्फ फसलों के ऋण पर ये लागू होती है। कुछ किसानों ने अपनी पीड़ा इस तरह बयां की।
हम बड़े किसान हैं साहब, लेके हमें ये बात को तो कह साहब के हल करने को कह दो हैं। बड़ी तो छूटन से भी परेशान हैं कि जैसे हमारे पास आज की पोजीशन में जैसे 10-12-15 एकड़ जमीन है साहब, तो उनमें भी तो हमने लागत लगाई, कह जाओ उठाओ बैंकन को, तो अब जैसे आप जो सोचते कि ये बड़न छूटन को भी करो तो बड़न को भी 1,00,000 तक को सबको कह देते, छोटे बड़े मिला के तो सब तो खुश हो जाते।
नुकसान हुआ है, फायदा क्या हुआ है, कुछ नहीं। बड़े बड़े नेता थे जो है, उन्हीं ने कहा था, वही ये बोल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो किसान है, मजबूर हैं, भाई कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं।
यही आशा लगाए थे कल से साहब, पूरे दिन वो टीवी देखकर देखकर कि चलो सबको कह जाओ हम चल मार। किसान है, हल्के हों चाहे बड़े हों, सब परेशान है। बड़े किसान बड़ी लागत है, ज्यादा खाद डालो, ज्यादा बीज डालो, पैदावार बिल्कुल नहीं भाई साहब।
वही जानकारों का कहना है कि सरकार ने कर्ज माफी जैसे मुद्दे को एजेंडे में लाकर एक सराहनीय काम जरूर किया है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर उसे और जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह कहते हैं,
देखिए छोटा और जो मझोला किसान है आमतौर पर वो फसली ऋण को अवॉइड करने की कोशिश करता है, तो गैर बैंकिंग सेक्टर से लेता है वो, क्योंकि बैंकों का रवैया उनके प्रति, उनके पास जमीनें कम होती है, बैंक के अधिकारी दौड़ाते बहुत ज्यादा है, तो और अगर दौड़ाएंगे भी नहीं, अगर मान लीजिए 5 एकड़ तक का किसान है तो उसको 50,000 रुपए से ज्यादा ये देने वाले नहीं है। तो जो ज्यादा ऋण है वो बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड वालों के ऋण है या फसली ऋण है, वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और फसली ऋण में भी अगर आपने देखा होगा तो एक बंदिश होती है कि अगर आपने चुकाया नहीं एक सीमित समय में तो अगला क्रेडिट देंगे ही नहीं, डिफॉल्टर की सूची हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा संवेदनशील है कि हवालातों में बंद कर देते हैं किसानों को।
योगी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के 1,00,000 रुपए तक के फसली ऋणों को माफ करने का फैसला किया है, लेकिन राज्य के किसानों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस सीमा में किन्हीं कारणों से आता ही नहीं है। किसानों की एक बड़ी संख्या भूमिहीनों की है जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, जबकि तमाम छोटे किसानों ने फसलों के अलावा कृषि उपकरणों पर भी कर्ज ले रखा है। यही नहीं, राज्य के कई हिस्सों में ऐसे किसान भी हैं जिनके पास जमीनें भले ही ज्यादा हैं, लेकिन जमीन उपजाऊ न होने, परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने और आय का कोई दूसरा साधन न होने के कारण उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन किसानों ने भी कर्ज माफी से राहत की उम्मीद लगा रखी थी। यही नहीं, सरकार ने जिस तरह से बिना केंद्र सरकार की मदद के ये राहत देने का फैसला किया है, उसका प्रबंधन करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस पर करीब 36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अरविंद कुमार सिंह कहते हैं,
इस तरह के कदमों से जो कृषि संकट उत्तर राज्य में खड़ा हो गया है वो दूर नहीं होने वाला है, ये तो केवल मूल नीति को ठीक करने से दूर होने वाला है। इसको समग्र रूप से देखने की जरूरत है, इस कर्ज माफी को भी, और ऐसा ना हो कि वो राज्य की वित्तीय सेहत जो है जो कि पहले से ही खराब हो और बिगड़े।
बहरहाल सरकार अपनी पीठ ठोक रही है कि उसने अपना चुनावी वादा पूरा किया है, लेकिन अहम सवाल ये है कि इस वादे के पूरा होने से किसानों का कितना भला होगा, क्योंकि सरकार की तमाम शर्तों के अलावा अभी किसानों को बैंकों की भी कई तकनीकी उलझनों से रूबरू होना है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का बड़ा ऐलान होने के बाद महाराष्ट्र में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि वो इसके लिए अपनी तरफ से कोई मदद नहीं देगी और राज्यों को इसे खुद के संसाधनों से ही जुटाना होगा। ऐसे में क्या कहते हैं अर्थशास्त्री, सरकार का ये कदम देश के लिए कितना अच्छा है? यही सवाल मैंने पूछा वरिष्ठ पत्रकार और अर्थव्यवस्था के जानकार MK वेणु से।
ये बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पिछले 2-3 साल में किसानों को बहुत चोट पहुंची है, और ये बैक टू बैक जो ड्राउट्स हुए हैं, दो और भी कंडीशंस खराब हुई हैं, बेमौसम ओले पड़े हैं, तो जो किसानों की जो आमदनी जो है, जो मोदी सरकार के आने के बाद बहुत ही आमदनी गिरी है। और मोदी जी ने आपको याद होगा 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में खास प्रॉमिस किया था कि किसानों को लागत के ऊपर 50% उनको मुनाफा मिलेगा, और इन्होंने कोई ज्यादा किसानों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रखी जाती वो भी बढ़ाया नहीं। तो ये सारी चीजें एकदम बढ़ बढ़ के एकदम गले तक आ गई थी और किसान सब जगह एजिटेट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये करना इनको जरूरी पड़ गया और यूपी में इन्होंने ये कर दिया। तो अब यूपी में कर दिया तो जाहिर है और देशों, ये तब भी बात हुई थी, आप बैंक तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे किसानों को लोन देता है, तो आप एक स्टेट में करके रुक तो नहीं सकते। तो अब जाहिर है महाराष्ट्र भी कह रहा है, जो बीजेपी की सरकार है, पंजाब ने भी अपने मैनिफेस्टो में बोला था अब कांग्रेस की सरकार वहां आई है वो भी करेगी, और इसका एक रिपल इफेक्ट होगा। और ये मेरे हिसाब से जाहिर है कि किसानों को बड़ी चोट पहुंची है। इस देश में पॉलिटिकल नैरेटिव चला हुआ है कि जो 3-4 साल से 5 साल से बड़े बड़े उद्योगों ने कर्ज ले रखे और 7-8 लाख करोड़ के कर्ज ले रखे और वो पैसा वापस नहीं कर रहे, तो अब किसानों को अगर 2-2.5 लाख करोड़ देना कर्ज माफ करो तो इसमें क्या दिक्कत है। तो ये नैरेटिव में ये सरकार अब ट्रैप हो गई है। हालांकि ये काफी टाइम तक रेजिस्ट कर रही थी, आपको याद होगा मोदी जी ने बजट में ये भी बोला था कि बीजेपी कांग्रेस की तरह ये डोल वाली नीति नहीं अपनाती, जो गिव अवे जिसे कहते हैं, फार्म लोन वेवर एक किस्म से यूपीए का एक यूपीए डिजीज माना जाता था, मगर अब इनको झक मार के भाजपा सरकार को भी करना पड़ रहा है और इसका इम्पैक्ट होगा। मगर अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि यूपी ने करा है तो सेंटर जो है केंद्र सरकार ये बोल रही है ये यूपी की प्रॉब्लम है, ये मेरे ख्याल से गलत है। केंद्र सरकार को ओन करना पड़ेगा क्योंकि ये आइडिया केंद्र से ही गया था, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, और इसका इम्पैक्ट केंद्र पे होगा क्योंकि दुनिया में जो इसका फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटे पे असर होगा और दुनिया सेंटर और स्टेट्स की वित्तीय घाटे को साथ रख के देख, तो इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि यूपी इतने बड़े कर्ज को यूपी कभी वापस नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा है। यूपी का वित्तीय घाटा एक ही झटके में 3 परसेंटेज पॉइंट्स बड़ा है। यूपी की जो जीडीपी है वो करीब $150 बिलियन है और ये कर्जा $5 बिलियन है, तो आप सोचिए 3% एक ही झटके में बढ़ा यूपी का वित्तीय घाटा।
एक बात ये भी सामने आ रही थी कि जब इसी तरह के कदम कांग्रेस उठा रही थी, चाहे वो मनरेगा हो या कर्ज माफी हो,
कांग्रेस ने 2009 में जो 70,000 करोड़ जो माफ किया था किसानों का लोन,
तो उस समय इसको बड़ा अच्छा कहा जा रहा था, लेकिन अब ये डिफरेंट अप्रोच क्यों कि भाई उनकी राज में जो अच्छा था वो इस राज में क्यों बुरा हो रहा है?
कौन कह रहा है ये बुरा है?
क्रिटिसाइज तो हो रहा है ना इस फैसले का कि इतना बड़ा इनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था।
मेरी निजी राय ये है कि ये किसानों को ये राहत पहुंचाना जरूरी था। हर एक कोई भी सरकार होती तो इससे प्रतिबद्ध होती कि कुछ किसानों को पहुंचाना। ये केवल जो इकोनॉमिस्ट है, असल में प्रॉब्लम ये है कि जो जहां तक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है, मोदी जी ने बड़े ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉमिस कर दिया था कि हम वित्तीय घाटे को बिल्कुल नियंत्रण में रखेंगे। अच्छा, ग्लोबल इन्वेस्टर जो इंडिया की जो कंपनियों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये कतई पसंद नहीं है कि आप किसान को 2-3 लाख करोड़ माफ करो, तो उनके जो इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है उन्हें किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये शुरू में उनके प्रेशर में भी थे एनडीए कि भाई ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे और ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज जो इंडिया को डाउनग्रेड कर दे, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल जो है और जो सोशल सेक्टर, मोदी जी ने दोनों को खूब वायदे कर रखे हैं और अब दोनों के बीच में फंस गए।
अर्थव्यवस्था के जानकार एमके वेणु बता रहे थे कि केंद्र सरकार इस फैसले में किस तरह से उलझी हुई है। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के अलवर में कथित गौरक्षकों के हमले में घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अलवर के बहरोड़ थाना क्षेत्र में गायें ले जा रहे हरियाणा के एक समूह पर शनिवार शाम को हमला किया गया था। हमलावरों ने पिकअप गाड़ियां भी तोड़ दी थी। अलवर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जिसमें से एक व्यक्ति की मंगलवार को मौत हो गई। अलवर पुलिस ने बीबीसी से पहलू खान नाम के व्यक्ति के मौत की पुष्टि की है और उसी समूह में अजमत भी थे, वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में अपनी आबीती सुनाई है।
ये सरकारी मेला रामगढ़ रोड की बात है। रामगढ़ रोड पे मेला लगता है सरकारी। हम यहाँ से भैंस लेने के लिए गए थे जयपुर, और जब जयपुर से भैंस नहीं मिली, महंगी थी, वहाँ पे पैसे हमारे जेब में इतने नहीं थे, 1 लाख रुपये कम कुछ थे। उसके बाद में फिर हमने गाय ले ली, गाय ली वहाँ से 75,000 रुपये में। वहाँ से लेने के बाद में हमने गाय कागज़ बनवाए, एक गाय के कागज़ 1,000-1,000 रुपये के बनवाए थे। वहाँ से कागज़ बनवाने के बाद में फिर हम वहाँ से पुलिस ने चेक करे वो कागज़। चेक करने के बाद में हम आए रास्ते में बहरोड़। बहरोड़ में आने के बाद 4-5 मोटरसाइकिल वालों ने पहले हमको घेर लिया। मेरी गाड़ी में मैं था, पहलू खा था, और जो एक वो अर्जुन था उसको पब्लिक ने अपने पक्ष में लेके भगा दिया। उस ड्राइवर था, गाय ले खा रहा था हमारे साथ में, जयपुर दिल्ली हाईवे के बीच में बहरोड़। वहाँ आने के बाद पब्लिक ने हमको घेर लिया, पहले पैसे छीने, फिर पैसा छीन कर फिर गायों की आड़ में उन्होंने हमारी मार पिटाई करी है, लात से, घूसों से, लाठी से, होकी ही उनके पास में, बेल्ट वेल्ट वगैरह जैसे भी उनके पास हुआ, पत्थर वत्थर सब तरह से मारा उनको। फिर हम मुझे तो कोई होश नहीं रहा वहाँ। उसके बाद में पहलू खां को पुलिस आ गई है, पुलिस ने कंट्रोल करके ले गई है। मेरे को रात में कम से कम 1-2 बजे होश आया, फिर होश आया, फिर हम अपने लेटे हुए। वहाँ की पब्लिक भी, हॉस्पिटल की भी ऐसे ही थे, हॉस्पिटल के अंदर भी कोई सुनने वाला नहीं था। फिर उसके बाद में हम इलाज चलता रहा, फिर 2 दिन, फिर चलने के बाद में फिर वो इसके इंतकाल हो गया दूसरे दिन, पहलू खां का
जी।
अजमत की आप बीती आपने सुनी जो उन्होंने बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से कही थी। नितिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन स्वागत है आपका। ये बताइए कि आप इलाके में हैं, क्या अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोगों को पकड़ा गया है?
निखिल, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं इस वक्त हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर के बीच में, मेवात जिला है उसके जयसिंहपुर गाँव में हूँ। और अभी जो आपने अजमत की आवाज सुनी, हमारे श्रोताओं ने सुनी, उसी के घर से करीब 400 मीटर दूर पहलू खां साहब का घर है। ये पहलू खां है जिनकी मौत हुई है इस मामले में। और अभी हमारी उनके बेटे इरशाद से बात हो रही थी, वो भी पीछे की एक पिकअप वैन में थे। आगे की पिकअप वैन में पहलू खां, अजमत और एक ड्राइवर थे। और इन लोगों का ये दावा है कि ये लोग भैंस खरीदने गए थे, और चूंकि भैंस के दाम बहुत ज्यादा थे, इनके मुताबिक जो इनको पसंद आ रही थी भैंसें, वो 80 से 1,000 से लेकर 1,25,000 तक की थी। तो इन्होंने थोड़े सस्ते पैसे में गाय ली, दुधारू गाय थी, ये दूध के पर्पज से लेकर आ रहे थे। और उसके बाद बहरोड में इनका दावा है कि इनका आरोप है कि इनको रोककर इनके साथ करीब 10 लोगों ने पहले मोटरसाइकिल से रोका, उसके बाद एक क्राउड ने इनके साथ मारपीट की। हालांकि ये लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो पुलिस थी वो 10 मिनट में मौके वारदात तक पहुंची और पुलिस ने इनकी खासी मदद की, ऐसा इन लोगों का दावा है। लेकिन इस पूरे गाँव में इस वक्त अफसोस का माहौल है, क्योंकि पहलू खां जो है वो जिंदा नहीं बचकर लौट पाए।
नितिन, अभी तक प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई है जिसमें ये पता चल सके कि कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं अभी तक?
जी, प्रशासन से मेरी जितनी बात हो रही है, प्रशासन का कहना है कि वो इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो जो वीडियो फुटेज है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि उसका वीडियो फुटेज जो है वो कुछ मोबाइल में लोगों ने बनाया है और वो काफी वायरल भी हो गया है। और उनको कहना है कि उस बेसिस पे, उसके बिना पर वो शिनाख्त कर रहे हैं लोगों की। लेकिन अभी तक करीब 50 मिनट पहले तक किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। नितिन,
बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। हवा चल रही थी वहाँ पर जहाँ नितिन थे, और इस वक्त इसके कारण जो है थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत हुई आपको सुनने में, हम क्षमा चाहते हैं। और आइए,
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31, 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,410, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ, और आज उस प्रोग्राम की बारी जिसका आप इंतजार करते हैं पूरे हफ्ते। पंजाब चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने से भारत में अरविंद केजरीवाल जिस तरह विरोध कर रहे हैं, वैसी ही आवाजें लातिन अमरीका के देश इक्वेडोर में भी गूंज रही हैं। यहाँ एक दशक से कायम साम्यवादी दल ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में बाजी मार ली है, और विपक्षी दल चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव में जीत का फर्क तो मामूली है, लेकिन क्या वजह है कि दशक भर से देश की सत्ता पर काबिज दल एक बार फिर जीत गए? दुनिया जहान में आज मैंने यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान,
दक्षिण अमेरिका में दक्षिणपंथी रूढ़िवादी सरकारों के बनने का जो सिलसिला अर्जेंटीना से शुरू होकर पेरू और ब्राजील तक पहुंचा, उसे इक्वेडोर में उम्मीदों के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी। बहुत जोर लगाने के बाद भी वहां दशक भर से कायम साम्यवादी दल के उम्मीदवार को विरोधी राष्ट्रपति चुनाव में नहीं हरा सके। 51% से कुछ ज्यादा वोट हासिल करने वाले लेनिन मारिनो अब इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति होंगे। मारिनो की जीत से सबसे ज्यादा परेशान है उनके प्रतिद्वंदी गिलेमो लासो, जो चुनावी सर्वेक्षणों में लगातार आगे रहने के बाद भी नतीजों में पिछड़ गए। बैंकर से राजनेता बने लासो ने अपनी जीत पक्की मान ली थी, और अब जब नतीजे उनकी उम्मीदों को तोड़ गए हैं तो उन्होंने चुनावों में गड़बड़ी की शिकायत कर आंदोलन शुरू कर दिया है। लासो भले ही अपनी हार नहीं हजम कर पा रहे हों, लेकिन लंबे समय से इक्वेडोर पर नजर रख रहे जानकार इस नतीजे को चौंकाऊ नहीं मानते। लातिन अमेरिका के 7 देशों में राजनयिक रह चुके दीपक भोजवानी ने कई बार इक्वेडोर का दौरा किया है।
मुझे तो हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि जो पहला राउंड हुआ था फरवरी में, उसमें मोरेनो आगे कुछ 10-12 पॉइंट से थे, लेकिन उनको 50% नहीं मिलने की वजह से वो मतलब सेकंड राउंड होना पड़ा उनका। तो सेकंड राउंड अब जो जाके हुआ है उसमें 2 पॉइंट का फर्क है। लगता ऐसे है कि बहुत क्लोज रिजल्ट है, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि लेनिन मोरेनो जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट थे पहले 3-4 साल पहले तक, अंडर राफेल कोरेया जो प्रेसिडेंट थे और जो काफी मशहूर माने जाते थे, जो जिन्होंने खुद ही तय किया कि मैं आगे चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं। वहां पे काफी तनाव है और एजिटेशन हो रहा है कि वोटें मतलब छीन लिए गए हैं या कोई बैलेट बॉक्स स्टफिंग हुआ था और कोई गड़बड़ हुआ है, इसलिए काफी मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर मौजूद इक्वेडोर के भूभाग में आंदियन हाइलैंड्स, अमेजन के जंगल और वन्य जीवों से भरपूर गालापेगोस के द्वीप शामिल हैं। पारंपरिक रूप से खेती करने वाले देश ने 1960 के दशक में आगे बढ़ने के लिए कारोबार और उद्योगों के विकास का रास्ता चुना और तेल की खोज ने उसके सपनों को खूब हवा दी। तेल और गैस यहाँ की जीवन धारा बन गए, हालांकि इसके साथ ही भ्रष्टाचार और उन दूसरी बुराइयों ने भी यहाँ जड़ जमा लिया, जिससे लातिन अमरीकी देश जूझते रहे हैं।
इक्वाडोर जो मुल्क था उसमें 20-25-30 साल से लेकर राफेल कोरेया के आने से पहले हमेशा हर 2-3 साल वो प्रेसिडेंसी बदलती रही, सरकार बदलती रही, बहुत ही मुश्किलियां थी। क्योंकि इक्वाडोर, आप जो साउथ अमेरिका के जो मुल्क है ना, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। इक्वाडोर जो है उसमें गरीबी इसलिए है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिजिनस लोग हैं, जिनके पास इतनी एजुकेशन ऊंची नहीं है, जिनको मतलब नौकरी प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उनके लिए जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस हैं, अनएडुकेटेड हैं, उनके तरफ हमें इस तरह से देखना है कि भाई देखो इनकी कमजोरियां कैसी है कि इनको ऐसी नौकरी नहीं मिल सकती है जैसे पढ़े लिखे बच्चों को मिल सकती है। तो उनके तरफ से उनके लिए कुछ पॉलिटिक्स ऐसे, पॉलिसीज ऐसे बनाए जाते हैं। तो इक्वाडोर में इतनी सारी पॉपुलेशन है जो इंडिजिनस है, जो मतलब बैकवर्ड है, उनके लिए राफेल कोरेया और अभी लेनिन मोरेनो, उनकी जहन उन पर होगी कि भाई देखो इनको पहले कैसे स्टेबलाइज किया जाए, कैसे उनको मौके दिए जाएं और किस तरह से उनकी जरूरियां पहले पूरी कर लें, उसके बाद हम देखेंगे। उसके अलावा ये भी है कि बहुत सारा करप्शन, बहुत सारा भ्रष्टाचार रहा है इस मुल्क में, खास तौर पे तेल का मुल्क है। तेल की मतलब धन इतनी थी कि जैसे वेनेजुएला में भी ह्यूगो चावेस के आने से पहले बहुत सारा भ्रष्टाचार था और जो तेल की कंपनी थी, हालांकि सरकारी कंपनी थी, उसमें भी भ्रष्टाचार इतना हो रहा था कि जो कमाई, जो आमदनी आ रही थी मुल्क में, वो उसका फायदा लोग, आम आदमी को नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने आके काफी डिस्ट्रीब्यूशन की है, मतलब इकोनॉमिक्स उसका बदल दिया इस तरह से कि वो ज्यादा सोशलिस्ट किया है। अब उसका रिएक्शन जो था ये था कि भाई देखो बिजनेस की तरफ से किसी ने को किसी ने देखा ही नहीं है और बिजनेस बहुत ही कमजोर हो गया उसके बाद, बिजनेस सेक्टर जो है।
2007 में आई साम्यवादी सरकार ने इन बुराइयों पर तो काबू कर लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कारणों से जो नए हालात उभरे उसने लोगों को उससे थोड़ा दूर भी किया है। इक्वेडोर के केले आज भी दुनिया भर के सुपरस्टोर में बिकते हैं, लेकिन खेती पर बदले माहौल का खूब असर हुआ है। इसके अलावा औद्योगिक ढांचा इतना मजबूत नहीं है कि वो नई चुनौतियों का सामना कर सके। तेल की गिरती कीमतें अर्थव्यवस्था की रफ्तार रोक रही हैं और बेरोजगारों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है। ऐसे में दक्षिणपंथी पार्टी ने स्थिति को सुधारने और नौकरियां पैदा करने का भरोसा दिया। तो क्या इस चुनावी हार से दक्षिणपंथी मुहिम कमजोर पड़ेगी?
मुझे नहीं लग रहा कि झटका ज्यादा लगा है। ये जो कंजर्वेटिव पार्टी वाले हैं कह रहे हैं कि देखो ये सब ठीक है, आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन तो किया है, लेकिन अब तो तेल के दाम गिरे हैं, आपके पास धन है ही नहीं हाथ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप हमें मौका दो, बिजनेस को मौका दो, हम आगे बढ़ें और हम रोजगारी की प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन करवा लेंगे, हम टैक्सेस भी बढ़ाएंगे, ये वो सब कुछ करेंगे। लेकिन ये डिबेट तो जो है चलते आ रहा है और बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो फंडामेंटल बातें हैं कि ये इकोनॉमीज जो है इन मुल्कों की, ये कभी कभी रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, यहाँ इस हद तक कि अगर रॉ मटेरियल के दाम गिर गए या तो बाजार ऐसा पलट गया जैसे कि चीन में डिमांड घट गया या हिंदुस्तान में या यूएस में या यूरोप में डिमांड घट गया,
इनके इनके प्रोडक्ट्स के लिए, तो बहुत ही धक्का लगता है इनको हद से ज्यादा। तो प्रॉब्लम ये ऐसे हैं, और इनकी जो इकोनॉमीज हैं वो इस तरह से सॉलिड नहीं है कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बेस हो, टेक्नोलॉजी की बेस हो, जैसे कि हिंदुस्तान में हमने बनाया है। तो इस वजह से इनके डिबेट हमेशा लेफ्ट राइट के डिबेट बहुत ही जबरदस्त होते हैं।
लंबे समय तक स्पेन का उपनिवेश रहा इक्वेडोर अब चीन के निवेश में आकंठ डूबा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में करीब 25% भागीदारी चीनी कंपनियों की है, और जानकार मानते हैं कि साम्यवादी सरकार की जीत के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अब्दुल नाफे,
इक्वाडोर एक ऑयल इकोनॉमी है, तो वहाँ राज्य का काफी कंट्रोल है, ऑनरशिप है ऑयल को लेकर के, बिजनेस वहाँ चल नहीं पाएगा ज्यादा जो प्राइवेट सेक्टर और लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है वहाँ ऑयल के अंदर, एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तकरीबन 25% इक्वाडोर की GDP है वो चाइनीज कर्जे के अंदर है। ये सारी चीजें ना स्टेट मोबिलाइजेशन के थ्रू चलेंगी, इकोनॉमिक जो इश्यूज है वहाँ उन पर चाइना का काफी इस वक्त कंट्रोल है, दबाव नजर आता है।
वैसे मारिनो और निवर्तमान राष्ट्रपति रफाइल कोरिया का करिश्मा भी कम नहीं है। अब तक सरकार चलाते आए कोरिया साम्यवादी तो हैं, लेकिन कट्टर नहीं, और उन्होंने देश में निजी कारोबार को भी फलने फूलने का मौका दिया है। दूसरी तरफ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे मारिनो के लिए लोगों के मन में सहानुभूति भी है।
रफाइल कोरिया का जो पिछले 2 टर्म प्रेसिडेंट रहे हैं, देखिए वो एक तो अमेरिका की टॉप किसी एक यूनिवर्सिटी में, हाल से प्रिंसटन से PhD हैं वो, और इकोनॉमिक्स में हैं, कई काम भी किया उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF में। उनका जो शासन था वो फिर भी मॉडरेट और फॉरवर्ड लुकिंग था, तो जैसे वो प्राइवेट बिजनेस को भी उन्होंने कोई ऐसे नाराज नहीं किया जैसे वेनेजुएला में किया, उस तरह का कन्फ्रंटेशन बिल्डअप नहीं हुआ जिस तरह से चावेज और हमारे जो बाद के प्रेसिडेंट इन्होंने किया है वेनेजुएला में। थोड़ी मॉडरेट पॉलिसी थी, अब जैसे सब जानते हैं कि हैं लेफ्टिस्ट, लेकिन वहाँ हर चीज डॉलर में चलती है, उनकी नेशनल करेंसी अमेरिकन डॉलर है। आप अखबार खरीदें, आप टैक्सी में सफर करें, आप कॉफी पिए, पेमेंट आप डॉलर में करते हो, तो उससे जो अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के निवेशक थे उनके कॉन्फिडेंस भी रहा इक्वाडोर के अंदर, वहाँ की लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट में, उनकी उसकी पॉलिसीज पे।
मारिनो और लासो के बीच हार जीत का फासला ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस जीत से एक और शख्स जिसकी जिंदगी पर असर पड़ेगा वो है विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज। लंदन की इक्वेडोर एम्बेसी में रह रहे असांज को लासो ने सत्ता में आने के बाद वहां से हटाने की बात कही थी। अब असांज ने पूछा है कि इस हार के बाद लासो कहां जाएंगे। तो ये था इस हफ्ते का दुनिया जहान, और आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं खेल समाचार। राखी शर्मा आ चुकी हैं खेल की खबरें लेकर के, और आज तो इनके चेहरे पर जो चमक है वो मुझे लगता है IPL के मैदान से आ रही है। जी राखी बताइए।
बिल्कुल सही कहा आपने, IPL का 10वां संस्करण जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, अब से कुछ ही देर पहले उद्घाटन समारोह हुआ बहुत शानदार, और अब से कुछ ही देर बाद पिछले साल की विजेता सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमों के बीच पहला मुकाबला इस सीजन का खेला जाएगा। फिलहाल टॉस हो चुकी है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम ने इसे जीत लिया है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस टीम की तरफ से 2 खिलाड़ी डेब्यू करते दिखाई देंगे, तेज गेंदबाज अनिकेत चौधरी और टाइमल मिल्स। बता दें कि इस मैच के लिए RCB के जो रेगुलर कप्तान हैं विराट कोहली वो नहीं खेलेंगे, साथ ही AB डिविलियर्स भी बाहर बैठेंगे, और सभी जानते हैं कि KL राहुल भी पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। वहीं हैदराबाद टीम की कमान डेविड वार्नर संभाल रहे हैं।
बहुत शुक्रिया राखी इस खेल समाचार के लिए, और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। चीन ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर कड़ा विरोध जाहिर किया है। उधर भारत ने दलाई लामा की यात्रा को पूरी तरह धार्मिक यात्रा बताया है और चीन से कहा है कि इसे राजनीतिक रूप में न ले। सीरिया में कल हुए गैस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ताइवान का कहना है कि वो चीन से अपनी रक्षा के लिए 8 पनडुब्बी तैयार करने के इरादे में है। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने से जुड़ी बातचीत के दिशा निर्देशों को EU की संसद ने मंजूरी दे दी है। BBC समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया वात्सल्य राय ने, और आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। दिन भर में आज इतना ही। आपको बाकी खबरें देखनी हैं तो आइए bbchindi.com पर। कल सुबह नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।